चंद बातें जो इन्हीं आयात के अंदर गौर करने से हमारे सामने आती हैं, उसको भी देख लेते हैं। कुछ सवाल जहन में उठते हैं जब भी हम कुरान पाक की आयतें पढ़ते हैं, तो उनका जवाब अगर साथ साथ मिल जाए तो उससे ज़्यादा इंसान को सुकून मिलता है। पहली बात यह है कि पत्थर में से पानी निकला, तो क्या ये पत्थर की बरकत थी? हमारे यहाँ अमूमन चीज़ों से बरकत हासिल करना या तबरुकन कुछ काम करना या उससे फ़ायदा लेना ये मारूफ है, तो यहाँ याद रखिए कि असल बरकत अल्लाह के हुक्म से आती है। पत्थर में कोई ताकत नहीं थी। अल्लाह ताला जब चाहे चीज़ों में हिस पैदा कर दे और उससे किसी को फ़ायदा हो जाए, लेकिन अल्लाह का हुक्म ना हो तो किसी चीज़ से आप कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। तो इससे ये जहन में रहने की ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ में, दरख्त में, कुएं में, पानी में, चश्मे में, कहीं से भी अगर आप बरकत का कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं या उसको तबरकन इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी कोई ना कोई वजह आपके पास होनी चाहिए, जो कुरान की आयत या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस होनी चाहिए। लेकिन बाज़ लोग इस तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। मुझे किसी से एक वाक्य सुनने का इत्तफाक हुआ कि एक खातून थी, तो वो बड़े इत्तफाक से लोगों को कहने लगी कि मैं फलां दिन आलू काट रही थी, तो मैंने एक आलू काटा तो उसके अंदर, यानी आपको होता है कि थोड़ी जैसे कभी ज़्यादा पक जाएं तो कुछ शक्लें बनती हुई दिखती हैं, तो कहती कि उस आलू में से खाना काबा की तस्वीर बनी हुई है। लोगों ने कहा अच्छा हमें भी दिखाओ। जब लोगों को दिखाया तो लोगों ने कहा देखो देखो नीचे लफ्ज़ अल्लाह भी लिखा हुआ है। खैर अब क्या हुआ, वो आलू साहब बरकत वाले बन गए, लोगों में बात मारूफ हुई। अब उसके घर में महफिलें सजने लगीं कि लोग उस आलू जी की ज़्यारत के लिए आने लगे कि इसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। बाकायदा कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि वो आलू की वजह से इतनी मशहूर हो गई कि फिर लोगों ने कहा भी आलू तो ख़राब होने लगा है, तो इसकी तो शायद इंसल्ट हो जाएगी या वक्त के साथ उसकी रंगत बदल रही है। मशवरा क्या हुआ कि इसको दफन कर देते हैं। कब्र बन गई, फिर उसके बाद उस कब्र पर चादरें चढ़ने लगीं, और वहाँ अब भी, ये फैसलाबाद की गालिबन बात है, और अभी भी वहाँ, यानी वो अब कमाई का जरिया है, लोग आते हैं, खुशबुएं लगाते हैं, और वहाँ आलू की खानकाह बनी हुई है। अब ये एक बात है ना, आप देहातों में जाके देखें आपको ऐसी बीसियों कहानियाँ मिलेंगी। हमें तो समझ नहीं आती ये बातें अगर हमने बड़े मुस्नद जरिए से ना सुनी हो। तो याद रखिए कि किसी चीज़ से कोई बरकत नहीं आती जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। दूसरी बात एक और पता चलती है, एक सवाल उठता है कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि पत्थर पे असा मारेंगे तो पानी निकलेगा? नहीं पता था। उन्होंने बस अल्लाह का हुक्म सुन के समय ना व अता ना वाली बात की। इससे एक बात ये भी पता चल जाती है कि पैगंबरों को गैब नहीं मालूम होता। जब तक अल्लाह ताला किसी चीज़ की हकीकत ना खोल दें, तो अल्लाह ताला ने यहाँ इस बात के एंड पे यही बात कह दी कि वला तासुफिल अर्दि मुफ्सिदीन, फसादी ना बनो। और हकीकत ये है कि खाना पीना इंसान को तकलीफ़ नहीं देता, ना इससे कोई बुराई फैलती है, लेकिन जब लोग खाने पीने को याशी का सामान बना लें तो उनके रवैयों से ताफुन उठता है। रवैये ख़राब होते हैं तो बहुत ख़राबी आती है। याद रखिए कि रवैयों से जितना ताफुन, जितनी बैड स्मेल उठती है, उतना वायरस कोई और ऐसा नहीं कि जो इस्लाम को नुकसान दे। सहाबे कराम की यही खूबी थी कि वो खाते पीते भी थे तो उसके अंदर से अल्लाह ताला के लिए कुछ काम करने के लिए ताकत का हसूल होता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में जाते थे तो साथ खाना लेके जाते थे, ये नहीं कहा था कि मैं वहाँ खुद ही मुझे मिल जाएगा। तो बहरहाल ये फसाद पे बात इंशाल्लाह आगे जाके फिर भी हो सकती है। आइए अगली आयत को देखते हैं कि इन लोगों ने ये बात देखी। और एक छोटी सी चीज़ और रह गई, और मुझे लगता है कि जितनी भी दफ़ा हम आयत को देखते जाएंगे इसमें कई कुछ मिलेगा। यहाँ जो जो लफ्ज़ इस्तस्का का आया था, यही लफ्ज़ सलातुल इस्तस्का के लिए इस्तेमाल होता है। आज उम्मते मुस्लिमा में भी पानी तलब करने का यही तरीक़ा है कि जब किसी इलाके में बारिश ना हो तो लोग खुले मैदानों में निकल जाते हैं। एक शख्स जो है, जो इमाम होंगे या जो भी वहाँ के बड़े, वो नमाज़ पढ़ाते हैं, उसके ख़ास तरीक़ा होता है, तो उसको सलातुल इस्तस्का कहते हैं, पानी का तलब करना। और बस लोगों ने इनकार किया, जो अक़ल को बहुत ही इस्तेमाल करते हैं ना, तो वैसे मौजज़ात का इनकार करते हैं कि ये कैसे हो सकता है जी, पत्थर में पानी है और नहीं उसका सोर्स किधर है। जब लोग हर चीज़ को साइंस के नाते से प्रूव करना चाहें या अक़ल में लाएं, तो फिर तो उनको समझ नहीं आएगी। तो आप देखिए कि जो ज़ात पत्थरों के अंदर किस तरीके से, यानी जज्ब की कैफियत पैदा कर देती है। पत्थर को पत्थर पर रगड़ें तो आग निकलती है, क्या अंदर कोई माचिस रखी होती है? तो क्या पत्थर से पानी नहीं निकल सकता? इसलिए ऐसे तमाम मामला जिसका जिक्र अंबिया कराम से हो, यहाँ ये भी जहन में रखिएगा कि इन तमाम मोजज़ात का ताल्लुक नबियों से होता है। आज किसी बुज़ुर्ग की करामत या किसी वली के हाथ से ऐसा कोई आप कहें कि हो जाए, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए भी हो गया था, तो मोजज़े का ताल्लुक नबुवत से है, वलायत से नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। वह इस कुल तुम, और जब तुमने कहा, दोबारा वही अंदाज है, बनी इसराइल को खिताब किया जा रहा है कि तुमने कहा, हालांकि उनके फोर फादर्स ने कहा था, लेकिन वो चूंकि इस बात पे राजी थे तो इशारा उन्हीं की तरफ कर दिया गया, या मूसा, ए मूसा। दोबारा वही अंदाज है, नबी का नाम लेके पुकारना जवाल शाफ्ता कौमों की अलामत होती है। क्या कहा? लन नस्बिरा, हम हरगिज सबर नहीं कर सकते। ये इनकी हिर्स की दलील है, हम सबर नहीं कर सकते। किस पे? अला तौमिम वाहिद, एक खाने पर। ये किस तौमिम वाहिद की तरफ तस्कर है? पीछे हम देख चुके हैं कि बनी इसराइल के ऊपर मन और सलवा दो खाने उतरे थे, एक उनके मीठे की ज़रूरत को पूरा कर रहा था, एक उनके नमकीन और गोश्त की ज़रूरत को पूरा कर रहा था, एक ख़ास वक्त तक जब ये खाना खाते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ? कहने लगे कि हम थक गए हैं एक ही खाना खा के, हालांकि यहाँ एक नहीं था, दो खाने थे। तो यहाँ वाहिद से मुराद वाहदत है, यानी एक सिमिलर खाना रोज़ खा के। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे किसी शख्स को हर रोज़ दाल खानी पड़े, साथ चावल भी हो, साथ अचार भी रखा हो। अब दो तीन चीज़ें हैं, लेकिन एक दिन रखें फिर दूसरे दिन भी वही रखें, तो बाद में वो कहे जी मैं एक ही खाना खा के थक गया हूँ, तो वो एक नहीं होता, कई खाने मिल के एक खाना बनता है। तो यहाँ भी यही बात है कि एक नहीं था, थे तो दो, लेकिन जब कोई चीज़ अल्लाह के हुक्म से बग़ैर मांगे मिल जाती है तो अमूमन लोगों को उसकी कदर नहीं रहती। कहने लगे लन नस्बिर अला तौमिन वाहिद, हम हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते एक खाने पे, लिहाजा फद उलना रब्बक, पस पुकारिए हमारे रब को। देखिए ज़रा कौम का हाल, इतनी सुस्त कौम है कि दुआ भी खुद नहीं करती। आज हमारा भी ये हाल तो नहीं है? जिसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत होता है ना, वो तो अल्लाह ताला से फ़ौरन मांगेगा, और जिसके अपने ताल्लुकात बिगड़े होते हैं ना, तो वो दूसरों को कहता है तुम हमारे लिए दुआ करा दो। आज हमारा हाल क्या है कि मुर्दा मर जाता है और कहते हैं मौलवी साहब आप ज़रा आके दुआ करा दें ताकि मुर्दा बख्शा जाए, और अगर कहीं को मौलवी साहब ना मिले तो फिर सोचिए कि क्या वो मैयत लटकती रहेगी। और कह क्या रहे कि रब्बका, अपने रब को पुकार। क्या बनी इसराइल अल्लाह को नहीं मानते थे? मानते थे, लेकिन ये कहने के बजाय कि रब्बुना, हमारे रब को पुकार, ये कह देना कि अपने रब को पुकार, इनकी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक की बात है, अपना रब नहीं का तुम्हारा रब। और याद रखिए ये ताल्लुक बिल्ला ही है जो एक इंसान को इस दुनिया में रहते हुए नामुमकिनात को मुमकिन दिखाता है, इस भरोसे पे कि मेरा रब ये काम कर सकता है। लेकिन जब लोग अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हों, इतने महव हों, जब उन्होंने अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बनाया हो, तो फिर कभी दुआ की ज़रूरत भी पेश आए तो वो खुद नहीं मांगते, गिल्टी कॉन्शियस होता है। और बस लोग तो मैंने ऐसे देखे कि इतने बड़े बने कि कहते हैं लोग दुआ मांगे, लो हमने तो आज तक किसी से मांगा नहीं तो अब दुआ भी मांगे। यानी ये तकब्बुर की इंतहा है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस बंदे से नाराज़ होता है जो उससे नहीं मांगता। तो लिहाजा मैं अपने लिए अमल की, हमें क्या बात मिली कि इंसान को अल्लाह ताला से अपनी दुआएं खुद मांगनी चाहिए। अब दुआ क्या है? युखरिज लना मिम्मा तुम बितुल अर्दु, वो निकाले हमारे लिए जो ज़मीन से उगे। देखिए कहा कि अपने रब को पुकारो और मिले किनको, इनको, ये नहीं कहा कि युखरिज लका मिम्मा तुम बितुल अर्द। हाँ, खाना हमें चाहिए, मांगिए आप, ठीक है? आसमान के रिस्क को खा खा के थके हुए थे, ना शुक्री का रवैया। अल्लाह ताला ने आसमान से पाक साफ सुथरा खाना दिया, कहने लगे नहीं हम ज़मीन का खाएंगे। ये है इंसान की मादा परस्ती। मिट्टी से बना है ना, इसका दिल मिट्टी में ही लगता है, ज़मीन की तरफ झुकता है, और चेंज चाहते हैं। असल में ये तनवो पसंद हो गए थे, वैरायटी चाहते थे, और साथ बता भी रहे हैं कि क्या चाहिए। मिम बकलीहा, तरकारी उसकी, साग उसका, ग्रीन सब्जियाँ, हाँ, वक़िसाइहा, और ककड़ी, क्यूकम्बर, खीरा, वफूमीहा, गेहूँ या लहसुन, व अदसीहा, और दालें भी चाहिए। ऐसे लग रहा है कि पूरी हलीम का सामान है, हाँ, व बसलीहा, और प्यास उसका, यानी हमें तो ये कुछ चाहिए। आप सोचिए मिस्र में है ये, यहाँ ज़रा आपको मैं उस हालात में ले जाऊँ कि जहाँ इसे ये आए थे, तो आप तफसीर को ज़्यादा अच्छा समझ सकेंगे। बनी इसराइल वादी अतीक से पहले कहाँ रहते थे? मिस्र में रहते थे, और मिस्र आज भी दुनिया की बहुत बड़ी फर्टाइल लैंड है। इतनी बेहतरीन वहाँ सब्जी है कि आप देखें तो हैरान हो जाए। मैं जब वहाँ थी, यकीन करें कि जिस तरह आप सोचें कि सड़कों के किनारे हमारे मुल्कों में कपड़े और जूते बिकते हैं ना, तो वहाँ इस तरह सब्जी बिकती है, और इतना फ्रेश टेस्ट और जायका कि शायद मैंने कभी ऐसा नहीं खाया। वहाँ का कल्चर ही है कि लोग इवन कच्ची सब्जियों के साथ कोई भी, मतलब गाजर या कोई इस तरह की मूली खाए, साथ रोटी खा लेते हैं। ये लोग चूँकि पीछे से फिरौनी दौर में मिस्र में थे, वहाँ आदी हो चुके हैं इन सब्जियों के। ये मत सोचिए कि इससे पहले ज़मीन पे उगती नहीं थी। बाज़ लोगों ने ये भी गलत फहमी इसकी रखी कि इससे पहले तो आसमान से सिर्फ रिस्क आता था। नहीं, ये थोड़े सालों की बात है कि इनको वादी तीह में दिया, उससे पहले खाते थे। उससे पहले सारे नबी थे, कोई आसमानों से मनोसलवा थोड़ी आता था, लेकिन इनको टेस्ट लगा हुआ था ना। अब अल्लाह ताला ने इनको सहरा में भेजा था कि ताकि अब अपने आप को मुनज़्ज़म करें, तरबियत करें, कम खाएं। अल्लाह ताला ने इनको सारे कामों से आज़ाद कर दिया। खाना इनके लिए तैयार था, आसमान से आ रहा था। इनको कहा तुम मेरे काम करो, तुम जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, तुम अपनी तरबियत करो और खाने का इंतज़ाम मैं करता हूँ। इनको ये पसंद ना आया, क्या कहने लगे? काला, कहा अतस्तब्दिलूनल्लज़ी हुवा अदना। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं क्या तुम बदल देते हो उस चीज़ को, बदले उस चीज़ के जो अदना है। यानी यहाँ मनोसलवा को आला कहा गया और दुनिया की ये चीज़ें जो मांगी गई उसको अदना कहा गया। क्यों मनोसलवा आला क्यों था? इसलिए कि पहली बात है कि अल्लाह ने उतारा हुआ था, फिर दूसरी बात है कि बग़ैर मेहनत के मिल जाता था, तीसरी बात है कि फ्रेश था, ग़ज़ाइयत के एतबार से अच्छा था, जायका भी अच्छा ही होगा, और आसमानों से आ रहा था जहाँ जन्नतों में अल्लाह ने क्या कुछ तैयार किया हुआ है। अल्लाह ताला कहते हैं इतना आला छोड़ के तुम अदना लेना चाहते हो, तो क्या सवाल पैदा होता है कि ये किस्सा और फूम और अदस क्या ये घटिया है? नहीं, ये मुराद नहीं है। आप इसे ये मत सोचिए कि उन्होंने ये चीज़ें मांगी तो ये चीज़ें घटिया हैं और इसको डिस्करेज करें। ठीक है, प्याज और लहसुन के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लम को कच्ची हालत में पसंद नहीं था, आप अपने लिए नहीं खाते थे, पसंद नहीं करते थे, लेकिन दूसरों को मना भी नहीं करते थे, इसलिए कि इससे स्मेल आती है। अब आप सोचिए कि आज आप प्याज और लहसुन की बात तो कह देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि लहसुन या प्याज खा के आने वाले की निस्बत सिगरेट पीने वाले के पास से ज़्यादा स्मेल आती है। तो अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ अगर किसी के लिए बनाई है तो उसमें कोई ना कोई फ़ायदा रखा है, तो इससे इन चीज़ों की कोई कमी की बात नहीं है कि ये ख़राब चीज़ें थी या ये आज नहीं खानी चाहिए। मतलब यह है कि एक चीज़ आसानी से मिल रही थी, अल्लाह ताला ने इनको दे दी थी, वो इनको ले लेनी चाहिए थी, खुश होते। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये चटारे के पीछे लग गए, टेस्ट कॉन्शियस हो गए। अल्लाह ताला मनोसलवा दे रहे थे, फ्रेश फूड दे रहे थे, लेकिन इनको टेस्ट वाली चीज़ें चाहिए थी। किसी भी कौम के अंदर जब कभी सारी कोशिशें खाने के टेस्ट के पीछे लग जाए ना, तो उनका यही हाल होता है। और किसी इंसान के मांगने से पता चलता है कि उसकी तरजीहात क्या है। अभी तो ये खाने की बात है ना, लेकिन अगर आप अमली ज़िंदगी में सिर्फ इस एक कानून को, यानी एक असूल है जो इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, क्या तस्तब्दिलूनल्लज़ी हुआ अदना बिल्लज़ी हुआ खैर, कहाँ कहाँ नहीं हम आला को छोड़ के अदना के तलबगार बने हुए। अल्लाह ने हमें जन्नतों के लिए पैदा किया, हम इस दुनिया में खोके रह के क्या ये आला के बदले अदना नहीं है? हमारा वो वक्त जो अल्लाह के रास्ते में लगता है, वो वक्त हमारे लिए सोने चांदी के वक्त को बाजारों की जीनत करते हैं। एक एक रुपया बचाने के लिए हम कई कई घंटे फिरते हैं। हम अपनी अपने आप को किस तरीके से पेश करते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिबास कितना प्यारा बनाया, हम अपने आप को किस लिबास में बनाना पेश करते हैं। अल्लाह ताला ने आला इखलाक सिखाए, हम बद इखलाक होना चाहते हैं। पूरी लंबी लिस्ट बन जाएगी कि कहाँ कहाँ आला को छोड़ के अदना के पीछे हैं। अल्लाह का कलाम आला है, अल्लाह की किताब की तालीम आला है, हम इसको छोड़ के दुनिया की उन चीज़ों के पीछे लग जाते हैं जो हमारे ख्याल में हमें फ़ायदा देने वाली होती हैं, और फिर भी उससे फ़ायदा उठाएं ना उठाएं ये हमें नहीं पता। इंसानों का रवैया ये दिखता है कि वो मेहनत करने की बजाय ऐसे कामों में मेहनत करने लगते हैं कि जो उनको सिर्फ इस दुनिया में फ़ायदा दे। अल्लाह ताला को गुस्सा आया इनके ऊपर, कहा अच्छा इहबितो मिस्रन, जाओ फिर किसी शहर में। अब सहराओं में तो सब्जियां उगने से रहीं, जाओ किसी शहर में जहाँ की ज़मीन अच्छी होगी। फिर फ़ाइन नलकुम मा सअलतुम, फिर तुम्हारे लिए उसमें वो होगा जो तुमने मांगा। यानी इशारा है इन्हीं चार पांच चीज़ों की तरफ कि जाओ फिर किसी शहर में वहाँ खेती बाड़ी करो और तुम्हारी मांगी हुई चीज़ें तुम्हें वहाँ मिल जाएंगी। इन्होंने उस वक्त ये तो सोच लिया कि हमें ये चीज़ें चाहिए, लेकिन ये भूल गए कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर से कोई चीज़ गिरती है तो आप हाथ बढ़ा के पकड़ लेते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर से तो कोई सब्ज़ी ऐसे नहीं खींच के निकाली जा सकती ना। नीचे से चीज़ को ऊपर लाना मुश्किल होता है। इसीलिए आज देखिए कि खेती बाड़ी है और ज़मीनों को काश्त करना एक काम रखता है। जो किसान ये काम करते हैं या जिन लोगों का ये पेशा है या शुगल है, वो जानते हैं कि इसमें कितनी मेहनत होती है। सुबह सुबह उठ के काम करना शुरू करते हैं, पानी लगाना, फसलों की हिफाजत करना, जड़ी बूटियों का उसमें से निकालना, इतने लंबे कामों में डले और नतीजा क्या हुआ कि सिर्फ उसी के होके रह गए। और आज क्या हालात हो गए कि इसी रिस्क और माश की कोशिशों की वजह से असल मकसद याद नहीं। कल के ये बनी इसराइल थे, लेकिन आज के ये मुसलमानों की कहानी है। अल्लाह ने इनके ऊपर, इनके सरों पे नेमतों की बारिश की, इनके लिए क्या कुछ रखा, लेकिन इन्होंने क्या मांगा कि हमें कुछ और चाहिए। ये वादा सिर्फ बनी इसराइल से नहीं था कि उनको आसमान से मन और सलवा मिलता है। अल्लाह ताला बस्तियों को कहते हैं कि अगर बस्ती वाले ईमान लाने के साथ साथ तकवा इख्तियार करते तो क्या होता। लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अरजुलिहिम, सूरत अलमाइदा की आयत 66 है। क्या वलौ अन्नहु मकामुत तौरात, और अगर ये तौरात को कायम करते और इंजील को, और जो इनके पास इनके रब की तरफ से नाजिल हुआ, तो अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से भी इनके लिए रिस्क उतरता और ज़मीन से भी उतरता। यानी अल्लाह की रहमतें किसी कौम पे कब आती हैं, जब उनकी इल्हामी किताब, उनकी मजहबी किताब राइज होती है, उस पे अमल आता है, फिर लोगों को खैर मिलती है। अगर आज मुसलमानों का हाल देखें तो आज हमने भी तो अल्लाह की रहमतों के दरवाज़ों को खुद ही बंद किया हुआ है ना। आज हम खाने पीने के चक्करों में कैसे पड़ जाते हैं कि उसकी वजह से हम अल्लाह की किताब तक नहीं सीख सकते। हमारी सारी ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन हमारा इस किताब के साथ एक रस्मी ताल्लुक़ होता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। इसकी वजह क्या है कि इंसान आला को छोड़ के अदना के पीछे होता है। किसी माँ का बच्चा स्कूल ना जाए तो माँ को बड़ा फिक्र होता है, ये क्या करेगा, ये बड़ा होके क्या बनेगा, इसको कोई हुनर नहीं आता, इसको कोई जॉब नहीं मिलेगी, ये कोई कारोबार नहीं करेगा। लेकिन कितने ही लोग हैं जिनको नमाज भी सही नहीं पढ़नी आती, उसका कितनों को फिक्र है। कितने हैं जिनको हराम हलाल का फ़र्क नहीं पता। आपको पता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में कोई शख्स कारोबार नहीं शुरू कर सकता था, नया बिज़नेस शुरू नहीं कर सकता था, जब तक वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से किताबुल बियू और मज़ारात, यानी जो भी इससे रेलेवेंट बाब हैं कि जिसमें ट्रेडिंग के और तिजारत के सारे असूल लिखे हुए, वो नहीं पढ़ लेता था। और अब देखें तो हमें दीन मिला ही इतना प्रैक्टिकल है। बस अगर कोई शख्स कारोबार नहीं करता, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है इसके पढ़ने की। ठीक है, वो पढ़ेगा, इल्म के मैदान में तालिब इल्म में उसको सवाब होगा, अजर मिलेगा, बरकत मिलेगी, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। कोई शख्स है, उसकी शादी नहीं हुई, तो अब उसको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं या इसके लिए फ़र्ज़ नहीं है कि वो ये पढ़े कि बीवी के क्या हकूक होते हैं या बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वो ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन जहाँ कोई काम इंसान करे और उसकी रहनुमाई कुरान और सुन्नत से ना ले, ये जुर्म हो जाता है। आज आप देखिए कि जब हलाल बिज़नेस होते हैं, कोई हराम की बात नहीं कर रही, हलाल बिज़नेस होते हैं, बिल्कुल सही मेहनत के होते हैं, लेकिन इल्म ना होने की वजह से वहाँ कितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि कोई बंदा जब भी किसी काम में कूदे तो पहले अल्लाह ताला से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से उसकी रहनुमाई ले ले। अब हुआ क्या, मांग तो बैठे, लेकिन वदुरिबत अलैहिम अज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, और मार दी गई उन पर जिल्लत और मुख्ताजी। किस तरह की जिल्लत और मोहताजी थी कि एक तो खाना फ्रेश आसानी से मिल रहा था, पता क्या चला कि ये खाना खुद लाना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, मुश्किल में पड़ गए, उनको परेशानी हुई, वो आराम से लेने की बजाय अब मेहनत से लेने पड़े। दूसरी ये जिल्लत और मस्कनत क्या है जिसका तذکرہ अगले हिस्से से हो रहा है कि वबाउ बि गदब मिन अल्लाह, और अल्लाह की तरफ से इन पर गज़ब टूटे, अल्लाह का गुस्सा लेकर आए। देखिए बनी इसराइल वो कौम थी जिसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें जहानों में से चुना और तुम्हें इज्जत दी, लेकिन आज उस उम्मत का हशर क्या हुआ कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दुरीबत अलैहिम अज़िल्ला वल मस्कना वबाउ बि गदब मिन अल्लाह। ये कब होता है? कोई चुनी हुई कौम अल्लाह के गज़ब का शिकार कब होती है? जब वो अल्लाह की किताबों से रहनुमाई लेने की बजाय अपनी ख्वाहिशात पे चलने लगती है, अपने नज़रियात, अपने ख्यालात, अपनी अकल और अपनी मसलहतों को सामने रखने लगती है। जब लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं ना अल्लाह के दीन के मामले में, और जब उनके अंदर सरकशी आती है और वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, तो वो कौम जिसको अल्लाह ने अपनी किताब की रहनुमाई के ज़रिए से, यानी लोगों तक अल्लाह के दीन को पहुँचाने के मनसब पे रखा हो, जो अल्लाह की किताबों की अमीन होती हैं, ऐसी कौमें दुनिया में अल्लाह की रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं। हर दौर के मुसलमान जो हैं वो इस दुनिया में अल्लाह के पैगाम को आम करने के मनसब पे फ़ाइज़ होते हैं, लेकिन जब वो कौमें खाने पीनों में लग जाती हैं, ख्वाहिशात की ग़ुलाम हो जाती हैं, और उनमें से किसी के पास वक्त ही नहीं होता, किसी के पास कमाने के लिए, किसी के लिए पास पकाने के लिए, किसी को सजाने संवारने के लिए, तो नतीजा क्या होता है कि ऐसी कौमें अल्लाह के गज़ब में आने लगती हैं। आज अगर आप उम्मते मुस्लिमा को इस ग्लोब में जाके देख लें तो कोई इज्जत उनकी भी नहीं है। सारी दुनिया में इख्तियारात दूसरों के पास होंगे लेकिन आपको नहीं मिलते, इसलिए कि आज मुसलमानों में भी वो सारी चीज़ें निकल गई जो उस दौर के बनी इसराइलियों में से निकल गई थी। कल अगर वो गज़ब से गज़ब पे टूटे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आज मुसलमानों के ऊपर भी कुछ कमी नहीं। अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि रहमतें हैं तेरी अग़यार के काशानों पे, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे। ये शिकवा और जवाब शिकवा इनकी दो नज़में हैं, उसके अंदर से ये अशआर है। कहते हैं कि गैरों पे तो अल्लाह ताला आपकी बड़ी रहमतें हैं, आज भी हम यही सोचते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ वेरी गुड, उनके ऊपर कितना अच्छा है, उनके सिस्टम देखें, तो क्या आसमान से आए हैं? उन्होंने बनाए, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अदल कायम किया, उन्होंने रिसर्च वर्क किया। आज भी आप देख लीजिए, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती लेकिन आज भी लगता है कि मुसलमान फूड कॉन्शियस ज़्यादा है। आप किसी इलाके का मिजाज देखा करें, मैं तो बहुत क्रिटिकली जगहों को देखती हूँ, कहाँ किस चीज़ की कसरत है। मैं कुछ अर्सा पहले किसी मुसलमान मुल्क में थी और हमारे जो होस्ट थे हमें कहीं से गुजरते हुए दिखाने लगे कि देखें इस कोने से लेके ये पूरी लंबी कितनी रोड थी कि रोड के दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स थे, और उसमें से कसीर रेस्टोरेंट जो थे वो हमारे अपने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थे, और लोग सारे शहर से यानी इधर आते हैं। आप किसी जगह जाके देखें वहाँ ग्रोसरी स्टोर कितने, आप अपने इर्द गिर्द ही गिन लें कितने ग्रोसरी स्टोर्स हैं और कितने तालीमी इदारे हैं, कितने रिसर्च सेंटर हैं। ठीक है, मस्जिदें भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन इल्म कहाँ से आ रहा है? इल्म आज अगर कोई माँ अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करना चाहती है, अपनी बेटी की अच्छी तरबियत करना चाहती है, कोई शौहर समझता है कि मेरी बीवी को एक अच्छी मुस्लिमा होना चाहिए, मैं इसको अच्छी जगह पे भेजूँ, कहाँ भेजेंगे आप? मैं सिर्फ इस शहर की बात नहीं कर रही, आप ओवरऑल ग्लोब को देख लें, कहाँ हैं वो लोग जो आपको कुरान पाक की तालीम दें? और आप बेहतरीन जूते आपके मुल्क में मिलते हैं, जितने रंगों के जूते पाकिस्तान में मिलते हैं मैंने शायद कहीं नहीं देखे होंगे, या शायद मैंने देखा ही कुछ नहीं है। मैचिंग पर्स आप ले लें, आपको एक एक चीज़ सर से पाँव तक, जूती से लेके सर की पिन्नों तक मैचिंग की मिल जाएगी। और आप ज़रा अपनी ख़वातीन का हाल देखें, जाइए तो सही, ज़रा आप करीब से देख के तो आएँ कि जिनके पास मुलाजमें भी हैं, जिनके पास सब कुछ है, सुबह से लेके शाम तक उनका जिहाद क्या है कि इस जोड़े की ए टू जी मैचिंग लेनी है, दर्जी के पास ले जाना है, अब डायर के पास दुपट्टा रंगना है, अब इसकी मैचिंग लेस लेनी है, अब मोती लेने, अब रात को किसी फंक्शन में अब पहन के भी किसी को दूसरा जोड़ा जाना है, फिर वहाँ जाने के लिए तैयारी है, फिर दो दो घंटे अपने आप को सजाने के लिए कहाँ से कहाँ जाना है। आप देखिए, ये कोई अल्लाह न करे किसी पर तनकीद नहीं या कोई टॉन्ट नहीं है, ये उम्मतों के वो हालात हैं जिसकी वजह से वबाउ भी गदब मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से गजब का शिकार हो जाती है कौमें। जालिका भी अन्ना उम कानू यकफुरूना, इस वजह से कि वो कुफर करते थे अल्लाह की आयतों का। वह यक़्तुलूना नबीय्यीना बिग़ैरिल हक़, और वो नबियों को ना हक कत्ल करते थे। वज़ालिक बिमा असव, तीसरा जुर्म क्या था कि उन्होंने नाफरमानी की, और चौथा जुर्म क्या था कि वकानु यातदून, वो हदों से बढ़ते थे। आप अगर 1, 2, 3 करके इस एक आयत के हिस्से को जमा करके देखें तो कुफर से बात शुरू हुई। अल्लाह का कुफर नहीं, अल्लाह को मानने वाली कौम थी। बार बार दोहराती हूँ कि बनी इसराइल अल्लाह को मानते थे। इनका अकीदा था कि अल्लाह है, इनका अकीदा था कि मरने के बाद जन्नत या जहन्नम होगी, लेकिन कुफर किसका था? अल्लाह की आयतों का। क्या मतलब उसको तौरात को अल्लाह की तरफ से नहीं मानते थे? ऐसा भी नहीं था। तौरात को बरकत के लिए चूमते थे, रखते थे। ताबूते सकीना में इन्होंने भी तौरात रखी हुई थी, उसके नुस्खे, और उनको ले ले के आगे फिरते थे। आप पारे के अंत पे पढ़ेंगे, बंद किताब की इज्जत करना बहुत आसान होता है, और ऐसी करने वाले बहुत सारे होते हैं। असल रिस्पेक्ट क्या है कि खुली किताब की रिस्पेक्ट करना। किताब जब खुलती है ना तो ज़िंदगी पे उसकी मोहरें सख्त होती हैं। हर दौर में कौमों का रवैया ये रहा कि बंद किताब की बड़ी इज्जत है, उसको चूमो, उसको सोने चांदी के लफ्ज़ों से लिखो, उसको सिल के रेशम के जुजदानों में रखो, गोटे किनारी के अंदर लपेट के रखो, बहुत करेंगे, कस्में खाएं खाएंगे, उसकी ये वजीफे पढ़ने हो पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ ये किताब खुलती है तो उस वक्त लोगों का हाल क्या, कि कानू यकफुरून नबी आयात अल्लाह। अल्लाह ने मुसलमानों को खुली किताब के साथ मुसलमान बनने की दावत दी थी। आज कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं, आप चंद सेकंड के लिए सोच सकती हैं कि अभी तक आपके जानने वालों में कितनों का इंतकाल हो चुका है, औरतें भी हों या मर्द भी हों, आपके रिश्तेदार या गैर, आपके अपने, आपके बेगाने, बच्चों के रिश्तेदार, आपके, सोचिए 10-20 लोगों की मौत तो हमने अपनी ज़िंदगी में सुनी या देखी तो होगी ना, 20 का भी लगा लें, उन 20 में से कितने थे जो इस कुरान को समझ के दुनिया से गए। मैं तो जब किसी के दुनिया से जाने की खबर सुनती हूँ तो एकदम हुक ये उठती है कि अल्लाह ये बंदा भी कुरान के बगैर चला गया। पढ़ता था कुरान लेकिन नहीं समझ आता था, इतनी मिठास से महरूम था, इतनी प्यारी चीज़ से दूर होकर दुनिया से चला गया, और मैंने कुछ ना किया, मैंने इस तक पैगाम नहीं पहुँचाया। और अब पता नहीं कितनों को हम और महरूम रखे होंगे, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता। देखिए, जब आपके अपने दिल में आग उठती है तो तभी दूसरों को भी उसकी हरारत पहुँचेगी ना। हम तो खुद ठंडे बैठे हुए हैं, हमने सोचा वह बच्चियों की शादी करो, ख़त्म। एक मैंने बड़ी अजीब चीज़ देखी किसी की, और वो क्या थी कि बच्ची की शादी की जब तैयारी शुरू करते हैं ना लोग जहेज की चीज़ों के लिए, तो सबसे पहले कुरान ख़रीदना है। क्यों? इसकी भी बरकत होगी। एक मौके पर ऐसा हुआ, मैं कहीं खड़ी थी तो बुक स्टोर था, तो वहाँ पे एक खातून आई तो कहने लगी कि अच्छा सा कुरान दे, खूबसूरत, मांगते भी फिर जहेज़ एडिशन है, शादी में देना है। तो उन्होंने कहा कि ये वो है, कहने इससे भी अच्छे कागज़ का दिखाएं, बेहतरीन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको चाहिए एक स्पेशल होता है जहेज़ एडिशन, तो हम आपके लिए मंगा देते हैं। करी नहीं, अभी चाहिए, रात का वक्त था, बल्कि ऐसे ही मगरिब शाम के करीब का वक्त था। तो उन्होंने कहा भी इतनी क्या बात है, अभी क्यों चाहिए, अभी शादी? करी नहीं, ऐसे में कल से मैंने बच्ची की शादी की तैयारी शुरू करनी है, कपड़े वगैरह, तो मैं चाहती हूँ कि आज कुरान ख़रीद लूँ ताकि अच्छे काम से आगाज़ हो। अच्छी बात है, ठीक है, सुन्नत है, लेकिन ये नहीं पता कि बच्चियाँ उस कुरान को पढ़ती भी हैं बाद में कई के साल तक के नहीं। कई शादियों के कुरान कई के साल बाद ऐसे ही उठा के पकड़ा दिए जाते हैं कि हमें तो अब फुर्सत नहीं मिली, शादी के बाद बच्चे हो गए, फिर घरदारियों में पड़ गए। आप सोचिए कि क्या अल्लाह की आयतों के साथ आज हमारा भी किरार है? और मैं कहती हूँ कि हम तो तबाही के घड़े से बच के आए ना। इस वक्त अगर हमारी ज़िंदगी में ये कुरान खुल गया, अब तो मौत का भी डर नहीं आना चाहिए कि अल्लाह को कह देंगे अल्लाह तेरी किताब पढ़ते हुए आए हैं, नहीं पूरी हो सकी, देर से पता चला लेकिन कोशिश तो की। लेकिन दुख उस हाल पे है कि जिनकी ज़िंदगी ऐसी चली गई। हमें अपने हाल पे उस वक्त अफसोस करना चाहिए कि जब हम इस किताब के बग़ैर दुनिया से जाने लगते हैं। और ये कुफर आयतों का जो होता है ना, ये कौमों को जलील कर देता है, रुसवा हो जाती हैं कौमें। कभी इस बात से नहीं मिटती कि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास एटॉमिक एनर्जी नहीं है, उनके पास अपना मीडिया नहीं है। ऐसी हालत में कुछ नहीं होता, हर दौर में ऐसे ही रहे। आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे से सूरह आल इमरान से गज़वे बदर, गज़वे उहद, खंदक, आगे सब पढ़ते जाएंगे। तारीख इस बात पे गवाह है कि मुसलमान हमेशा थोड़े ही होते थे, उनके इसबाब हमेशा थोड़े ही थे। टूटी हुई तलवारों के मुकाबले में जदीद टेक्नोलॉजी का असलहा होता था, लेकिन फतह किसको होती थी? हक को फतह होती थी। जब कौमों के अंदर ये मिजाज नहीं रहता तो मुसलमान ढेर तो होते हैं, वो भीड़ तो होते हैं, उम्मत नहीं होते। और उसकी वजह क्या है कि उनकी ज़िंदगी खाने और पीने में लग गई। अल्लाह ने उनको सहरा नवर्दी कराई, जिहाद के लिए तरबियत दी कि कम खाओ, लेकिन उन्होंने तरह तरह के खाने मांगे। फिर उगाने के लिए वक्त लगने लगा, तो अल्लाह के रास्ते में मेहनत कौन करता? अल्लाह उनको गुलामियों से निकाल के दुनिया की इमामत के लिए तैयार करना चाहता था, लेकिन इन्होंने अपने आप को खानों से दूर ना करना चाहा। आज भी कितने लोगों का मसला ये है कुरान से दूर रहने का, कि नहीं फिर घर का खाना नहीं पकता। कई लोग अपने ऊपर रहम खा रहे होते हैं, क्या करें, कितने दिन से अपने हाथ का खाना नहीं खाया, गरम रोटी नहीं पकी। मैं सोचती हूँ जब बंदा कुरान पे आए और उसके बाद भी ऐसी बातें कहे तो अफसोस है। हो सकता है आप में से अभी भी कुछ लोग एडजस्ट ना हो पाए हों अपने इस कोर्स के साथ, और आप कहें किस मुसीबत में आ गए, घर का सारा काम तलपट हो रहा है और ये और वो हो रहा है। हमेशा हम वो देखते हैं जो हमसे छुटा, लेकिन हम ये नहीं सोचते हमें मिल क्या रहा है। हर दिन जब एक एक लफ्ज़ के बदले में जो सवाब और अजर है, जो हमारे दिल की दुनिया बदलेगी, जो इस किताब से हमारा ताल्लुक जुड़ेगा, क्या गर्म रोटी उसके मुकाबले की है? इन आयतों को पढ़ के अंदर ईमान की गर्मी आ जाए, ये उससे बहुत बेहतर है कि अगर हमारा हाल क्या हो कि हम पेट तो भरते रहें। और अगर यहाँ बैठ के भी हमें यही फिक्र है कि ग्रोसरी चाहिए और कुछ खाना ले आऊँ और यहाँ से भी उठूँ और कुछ ले आऊँ, तो सोचिए कि अभी वो दिल में बात ही नहीं आई। अल्लाह ताला कहते हैं, व यक्तुलूना नबी जी नबी गैर हक। ये दूसरा जुर्म था इस कौम का, जब किसी नबी ने उठ के इनको अल्लाह की बात बताई, ये उसके दुश्मन हो गए। कहते थे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ये हमें टोकते हैं, इनको मार दो। इन्होंने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। और ये दो नबी कौन थे? इनका तذکرہ आप सूरत आले इमरान के बिल्कुल आगाज़ में भी पढ़ेंगे, सूरत मरियम में पढ़ेंगे। दुआओं से मांगा हुआ बेटा यहया इन ज़ालिमों के हाथों मर गया, कत्ल कर दिया। और एक शख्स ने अपनी माशूका यानी अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए उनको कत्ल किया था। जब भी लोगों ने हक बात की, मुआशरे में फैली हुई बुराइयों पे बात की, तो लोग कहते हैं कि ये बहुत तनकीद करते हैं, इन्हीं को रास्ते से निकाल दो। अच्छी बड़ी इत्मीनान की ज़िंदगी थी, सारे एक जैसे थे। अब बीच में ये कोई 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 उल्टी सीधी बातें सुन के आ जाते हैं, हमारी महफिलों का मज़ा भी कर कर आ रहा है, निकाल लो इनको। अल्लाह ताला कहते हैं ये नबियों को कत्ल करते थे। आप देखिए कि उस दौर में तो नबी आते थे ना, तो उनका कत्ल था। क्या आज के दौर में भी हक बात कहने वालों को कत्ल किया जा रहा है? आपको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैकड़ों सहाबे कराम और उनके बाद ताबईन उस दौर के हुक्मरानों के हाथों मौत के घाट उतारे गए। आयमाए कराम जिनका नाम लेके आज हम मोहब्बत से बात करते हैं, इनको इतनी मार पड़ती थी कि आता है कि अगर हाथी को इतनी मार पड़ती तो वो बर्दाश्त ना कर सके। इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ क्या हुआ आप जानते हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल कहाँ हुआ था? जेल में हुआ था। इनको हक बात कहने के ऊपर पकड़ा जाता था, जेल से इनका जनाजा उठा था। और इतना बड़ा इनका जनाजा था कि उस शख्स ने इनको जेल में डाला, वो ये कह उठा, यानी अब इमाम अबू हनीफा के बारे में उसने कहा कि जेल में तो तुझे भेज दिया, लेकिन लोगों के दिल से तेरी मोहब्बत नहीं निकाल सका मैं। हक वाले के लिए दिल में मोहब्बत होगी, और जहाँ हक के ऊपर सियासत गालिब आ जाती है ना, वहाँ दीन तो बस एक पीछे की चीज़ है। उनकी हर पॉलिसी क्या होगी कि इससे हमारी धाक कैसे बैठती है और हम पनपते कैसे इस माशरे में। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनके कंधे खींचे गए थे, यानी उनकी हड्डियों के जोड़ खींचे गए और उनका मुंह काला करके उनको ऊंट पर बिठा कर फिराया गया शहर में। पढ़ के देखिए तारीख, हमारा तो हाल यह कि हमने खुद नहीं पढ़ी अपनी हिस्ट्री, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। सर हिंदी का नाम आपने सुना होगा, इनको दीवार के पीछे चुनवा दिया गया था, यानी आगे दीवार चुन दी कि जिंदा अंदर ही मर जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कहते हैं, व यक्तुलूना नबी जी नबी गैर अल हक। और ये कोई कत्ल का सिलसिला आज थोड़ी रुका हुआ है, जो आवाज़ हक की उठेगी उसके पीछे दुश्मन, उसके पीछे बड़ी बड़ी लॉबीज हैं। क्योंकि हम तो गलत काम कर रहे थे, तो हमें क्यों रोक रहे हो? और ऐसा वक्त जो होता है, ये अल्लाह ताला के अजाब को बुलाने वाला वक्त होता है। आज देखें मस्जिदों पे हमले, एक दूसरे के ऊपर हमले, क्या है? आज भी अल्लाह ताला जब हमें ऐसी बातों का हुक्म देते हैं तो हम कहते हैं क्या ज़रूरत है, इतनी तो इत्मीनान की ज़िंदगी है, कहीं इत्मीनान से बैठे हो? लोग जहालत में मर रहे हैं। देखिए कि दो हालात होते हैं कौमों की ज़िंदगी में, एक आम हालात नॉर्मल कंडीशंस हैं, सब ठीक चल रहा है, उसमें तो अल्लाह किसी को नहीं मजबूर करता कि कुछ करो, लेकिन कुछ इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं। अल्लाह के नबी के दौर में ये दोनों हालात आए। बदर के मौके में जिनको बुलाया था जिहाद के लिए वो आम लोग थे, उस वक्त कुछ नहीं था, जिसको आना है आ जाए, 313 आ गए। लेकिन जब तबूक का मौका आया तो एक एक बच्चे की ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी थी, वक्त की सुपर पावर मुकाबले पे आने वाली थी। जब इमरजेंसी हालात हों फिर लोग अगर अल्लाह के दीन को फैलाने में काम नहीं करते ना, फिर हिस्सा नहीं डालते, तो याद रखिए कि फिर ऐसे लोग जो हैं अल्लाह की नज़रों से हट जाते हैं। अल्लाह के ऐसे लोगों के लिए वादा क्या है कि यस तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम ऐसे हो जाओगे तो मैं तुम्हें बदल दूंगा, हटाऊंगा, किक आउट करूंगा, गेट आउट, और तुम्हारी जगह दूसरों को लाऊंगा जो तुम जैसे नहीं होंगे। फिर अल्लाह और लोगों तक भी इस्लाम को लाता है। आज देखिए न्यू मुस्लिम ज़्यादा काम कर रहे हैं और हम बोन मुस्लिम टेस के पीछे पड़े हैं। कोई बात करे तो कहते हैं क्या इमरजेंसी है, सब तो ठीक है। इतनी जहालत है, लोग जहालत की मौत मर रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत है शम्मे जलाने की, इस वक्त इल्म के दिए रोशन करने की ज़रूरत है, और इसके लिए कुछ लोग कुर्बानी करेंगे तो फिर चंद साल के अंदर सूरत बदली जा सकती है। हमें तो खुशकिस्मत समझना चाहिए अपने आप को कि अल्लाह ने इन अंधेरों के दौर में हमें चुना। अपने अपने हिस्से में ये एक छोटा छोटा दिया जला देंगे तो फिर आप सोचिए कि कितनी खैर होगी, और ये सारा वक्त नहीं रहेगी। अगर एक मुहिम चलाई जाए ना, ऐसी एक कंपेन चले ना, सारे मुत्तहिद होके 5 साल प्रोग्राम बनाए, इसके अंदर बड़ों की ज़रूरत होती है, हुक्मरानों की ज़रूरत होती है कि हम आपके रोटी पानी का इंतज़ाम करते हैं, जाएं आप दीन सीखें। साल, 1.5 साल, 2 साल कुछ भी नहीं होते, हर मर्द पढ़ सकता है, हर औरत पढ़ सकती है। घर घर में इल्म की शम्मा है, और हाल क्या है कि जब कोई पढ़ने लगे तो कहते हैं इसकी ज़रूरत क्या। मैं सोचती हूँ कि जब कोई किसी को कुरान पढ़ता पढ़ाता देकर खुश नहीं होता, आप कैसे कह सकते हैं कि वो दीन को पसंद करता है, इस्लाम को पसंद करता है? नहीं, वो दीन और इस्लाम को नहीं पसंद करता, वो अपने आप को पसंद करता है। वो चाहता है मेरे हाथ से ये झंडा लगेगा तो फिर तो ये फतह है, और अगर किसी और के हाथ से लगेगा तो ये तो नहीं, तो पीछे तो नाम है। जब इंसान दीन और सियासत में फ़र्क ना कर पड़े तो यही होता है। अल्लाह ताला के नबी ने कहा क़यामत के करीब जब लोग एक दूसरे को बुराइयों पर टोकना छोड़ देंगे ना, तो अल्लाह ताला जानवर को ज़मीन से निकालेगा, जिसको दाबतुल अर्ज़ कहते हैं, और वो दुनिया में फिरेगा। और सूरत गालिब फुरकान है या नमल है, उसकी एक आयत है कि वो लोगों को जाके नेकी की बात कहेगा और बुराई से रोकेगा। और वो आयत अब मुझे याद नहीं, मैं तो हाफ़िज़े से ही बता रही हूँ आपको, कि वो उस वक़्त लोगों को कहेगा कि लोग अल्लाह की निशानियों से गाफिल थे। तुम ना करो अल्लाह के दीन का काम, हम में से कोई मजबूरी नहीं, अल्लाह ने खुद खुद से अपने दीन का काम कराया। मलका सबा को पैगाम दिया तो वो खुद खुद ने दिया। अल्लाह ने अबाबीलों से अपने घर को बचा लिया। क्या आज अल्लाह हमारा मोहताज है? अल्लाह बिल्कुल मोहताज नहीं है। ये तो हमारी किस्मत है कि अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में इस किताब को पढ़ने की तौफीक दे दे। इसलिए अगर इस रास्ते में किसी की बात सुननी पड़े, ताना सुनना पड़े, कोई ख्वाहिश पे पाबंदी लगे, तो फ़ौरन सोचा करें कि वो तो यक़्तुलून नबी जी न बग़ैर अल्हक़ था, हमें तो अभी कत्ल भी नहीं किसी ने किया। हम तो किसी की आंख का इशारा गलत देखें या किसी के माथे पे शिकन देखें तो हम कहते हैं नो नो, इससे आगे नहीं, हम थक गए, हम नहीं और स्ट्रगल कर सकते। नहीं, हमारे से घर वालों की ये बेइत्तनाई नहीं देखी जाती। और फिर ऐसी ही चीज़ें जब अजाब आते हैं तो फिर सबको पकड़ होती है। अल्लाह ने तीसरा उनका जुर्म बताया कि ज़ालिक बीमा असब, देखिए कितना गहरा रब्त है ना। आयतों का कुफर, तो आयतें लाने वाले अम्बिया के कत्ल पे बात पहुंच गई। आयतें नहीं अच्छी लगती, बंद करो ये सिलसिला, जो लेके आते हैं उनको कत्ल करो। जब ये दोनों चीज़ें हो गई, नतीजा क्या निकला? नाफरमानियाँ, बुराइयाँ, लोग हदों से गुजरने लगे। गुनाह का तो नाम ही मिट गया, क्योंकि गुनाह को सवाब समझ लिया। आज अब किसी दुनियादार बंदे से पूछें कि हम क्या कर रहे हैं, एक मौका था, बहुत पहले की बात है, किसी जगह लोग आपस में बातें कर रहे थे दीनदार और इस तरह की, तो एक खातून माशाल्लाह बड़ी अच्छी मुदब्बर खातून थी, पढ़ी लिखी लग रही थी, तो वो दूसरी औरत जो दीन की या पढ़ने की तरह माइल कर रही थी कि आप कुरान पढ़ें और सीखें, तो उनसे कहने लगी ना मुझे ये बताएं कि हम और क्या करें, नमाजें हम पढ़ते हैं, हज हमने किया हुआ है, उम्रा हमने किया हुआ है, अब आप बताएं अब हम और क्या करें, आप हमें क्या बनाना चाहती हैं? इतने स्ट्रिक्टली मैं देख रही हूँ, और वो बिल्कुल लड़ने के अंदाज में उस बेचारी खातून से बात कर रही थी कि आप क्या हमें बनाना चाहते हैं। इस तरह की बातें आप सुने, आप जितना आप कुरान की तरफ आएंगे ना, आपको अपने आपके आंसू बाहर से ज्यादा अंदर गिरेंगे। कि अल्लाह ये ज़िंदगी थी, ये तो शर्मिंदगी थी, ये तो ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी थी, ये मैंने कोई 20 25 30 साल की जो ज़िंदगी गुजारी है कोई ज़िंदगी थी? ये और जानवर की ज़िंदगी में क्या फ़र्क था? खाया पिया सोए ऐश किया ख़त्म। आज पता चला ये ज़िंदगी है। और जितना आप इस चीज़ों से दूर जाएं, आप कहेंगे हमसे अच्छा ही कौन है, हमसे अच्छा कौन हो सकता है। नाफरमानी आई, उसके बाद आखिरी स्टेप, जब नाफरमानियों पे ना रोका जाए तो वकानु यातदून, फिर लिमिटेशन क्रॉस होती है, फिर ट्रांसग्रेशन शुरू होता है। शुरू में छोटे छोटे गुनाह होते हैं, इस ओके ओके ओके, नहीं नहीं कोई नहीं, कोई खास मौका है तो गुनाह कर लेते हैं, खुशी का मौका है तो खैर है, गम का मौका है तो खैर है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये रवैया बन जाता है, फिर वही चीज़ें जो गरीबों की खुशियों के मौके पे आम होती है ना, वो अमीरों की आदत बन चुकी होती है। वही चीज़ जो पहले कभी साल में एक दफ़ा जायज़ करते थे अपने ऊपर, अब वो हर दिन जायज़ है। फिर ज़िंदगी फ़न का नाम है। आज पूछिए जाके क्या ज़िंदगी गुजर रही है, वीकेंड्स की शामें क्या देखते दिखाते जाती हैं, कहाँ गुजारते हैं हम अपने वीकेंड्स? मैं सोचती हूँ कि हमें फारिग रहने का मौका है। अब तो अल्लाह से ये दुआएं करें कि अल्लाह हमारी रातों की नींद कम कर दे, हम अपनी ज़िंदगी को ज़ाया होने से बचा लें। आग लग रही है ज़िंदगी को, आज आंखें बंद हो गई, कोई कुछ भी हमारे लिए नहीं कर सकेगा, और ये कितनी बड़ी रौनत है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, और ये क्यों हो रहा है? यानी दिल में 100 से ज़्यादा छेद हो जाए इंसान के इस बात को सुन के कि आखिर इस कुरान की ज़रूरत क्या थी पढ़ने पढ़ाने की। आपको भी हो सकता है कोई घरों में कहता हो कि ये क्या आपने बेगम नया काम शुरू कर दिया। किसी एक औरत ने कहा कि, मतलब लोग ऐसी बातें होती हैं, कहाँ भी कहा बातें याद आ जाती हैं, तो कहने लगी कि मियाँ कहते हैं कि घर बैठो और बच्चे पालो, ये क्या तुमने पढ़ना पढ़ाना शुरू किया है? तो मैं रो पड़ी, फिर ऐसे हुआ, फिर उनका मूड ख़राब हुआ, मेरा हुआ, आप बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा आपने हमाकत की, जब उन्होंने ये कहा था ना कि आप घर बैठे और बच्चे पालें, तो आप फ़ौरन कहती कि जी यही सीखने जा रही हूँ, वहाँ यही सिखाएंगे कि अच्छी माँ कैसे होती है और अच्छी बच्चे कैसे पालती है। खामोश हो जाते। आप लोगों को अच्छी बीवियाँ बन के दिखाइए, आप अच्छी बेटियाँ बन के दिखाएं, आप अच्छी माएँ बन के दिखाएं, यकीन करें जो मुखालफत करेंगे वो आपको छोड़ने आएंगे खुद। हमारे रवैयों से जब दीन नहीं दिखता ना, हम अपने घर वालों के सरों पे एक तलवार बन जाते हैं और ना समझ किस्म की तबलीग करते हैं और उल्टी सीधी बातें इधर उधर फैलाते हैं, नतीजा क्या होता है कि लोग फिर इस दीन से रिएक्शन में आते हैं। तो ये 4 जराइम की लिस्ट थी, इस पर गौर करिएगा। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर अगर इनमें कोई एक बात है तो फिर इसको बदलने की ज़रूरत है। और अल्लाह के कानून जो कल के यहूद के लिए थे, आज के मुसलमान के लिए मनोन वही हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, ये कभी नहीं बदले। सूरत आराफ की आयत 167 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइस्तअज़ना रब्बुका, और जब तेरे रब ने पुकारा, लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सू अल अज़ाब, अलबत्ता ज़रूर मैं इनके ऊपर मुसल्लत कर दूंगा उसको क़्यामत के दिन तक जो इनको बुरे अज़ाब देगा। यानी ये यहूद की हिस्ट्री, इस पे मैंने आज हिस्ट्री की बात नहीं की, वाओ भी गदब इन अला गदब, क्योंकि चंद रुकू के बाद आएगी। आपको हिस्ट्री से कुछ रेफरेंसेस नोट करा दूंगी कि बनी इसराइल पे अजाब आए कैसे थे। आज के नाम तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं ना कि दुनिया में कौन किसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन हिस्ट्री में भी तो किसी ने कुछ किया था ना। यहूद की हिस्ट्री में ऐसा वक्त आया था कि इनको लोहे के चैम्बर्स में जलाया गया था, इनकी खोपड़ियों को काट के उसके मीनार बनाए गए थे। जो सर अल्लाह के आगे नहीं झुकते ना, फिर वो कट जाते हैं। और मुसलमानों पे भी ये सब कुछ गुजर चुका। जब मुसलमान अपने दीन के साथ नहीं जुड़ते तो हाल यही होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरा वादा है कि मैं फिर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दूंगा जो क़यामत के दिन तक इनके सरों पे अजाब बन के मुसल्लत हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें बस सही हिदायत दे दे। फिर इसी तरह ये जो बात मस्कनत की आई थी ना इस रुकू में, ज़िल्लत वल मस्कना, इस पे मुफस्सरीन लिखते हैं कि एक आम ख्याल ये है कि यहूद दुनिया की दौलतमंद कौम है, लेकिन आप इनकी हकीकत खोल के देखें तो आज भी दुनिया के अंदर यहूद जो है, ये इसका आम शख्स जो है वो बड़ा गरीब है। एक मेरे पास कोटेशन है, ये जिविश इंटारकिटिका यानी इनका एक इंसाइक्लोपीडिया, उसमें उनके वॉल्यूम 10 पेज 151 पर लिखा हुआ है। ये लिखते हैं कि गो के यहूद का दौलतमंद होना ज़रबुल मिसल है, मगर अहले तहकीक कहते हैं कि यूरोप के तमाम शहरों में चंद अफराद के सिवा अक्सरियत गरीब है, यानी ये गरीब है। आगे इंशाल्लाह वो उस पर एक कॉल है, उस पर भी बात आएगी। खुलासा ये है कि जब हम अल्लाह ताला की बात नहीं मानते तो अल्लाह ताला ऐसे ही करते हैं। सूरत आले इमरान की आयत 112 में यही बात आती है कि दुरिबत अलैहिम ज़िल्ला अइनमा सुक़िफ़ू, अल्लाह ने इन पर ज़िल्लत मार दी, ये जहाँ भी गए तारीख में, ये जहाँ गए इनको बुराई हुआ। इल्ला हबले मिन अल्लाह व हबले मिन अन्नस, दो ही सूरत है इनकी इससे निकलने, या तो अल्लाह के नाम में आ जाए नहीं मुसलमान हो जाए, और या फिर हबले मिन अन्नस कुछ बड़ी ताकतों की पुश्त पनाह इनको मिल जाए जो कुछ मिली हुई है। आज पीछे से वो बड़ी ताकतों के सहारे टूटे तो ये कुछ कायम नहीं रह सके। दोनों एंगल सामने रखते हुए हम इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी पे गौर करेंगे। सुबहान रब्बा रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलाम अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगला रुकू बहुत अहम, इसमें बहुत बड़ी इसलाह है अकीदे की, दो करें कि कोई मिस ना करें।
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون